نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة الكهف آیت نمبر 62 سے ہم کنٹینیو کریں گے قصہ خضر اور موسیٰ جو ہم نے شروع کیا ہے اس کے اندر سے چند چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے آیتوں میں بھی دکھیں گی اور ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ اور خضر کے اس واقعے کے رنگ میں ہم سب کو علم اور علم حاصل کرنے کے ادب آداب اور دوسری چیز کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ تمہیں بظاہر وہ ٹھیک لگے اور وہ ٹھیک ہو اور وہ چیزیں جو تمہیں اپنی ذاتی زندگی میں مناسب نہیں دکھ رہی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بری لگیں لیکن وہ اچھی ہوں۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آسان تک رکھو شعین بہو خیر القم، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن اللہ کو اچھی لگے، اس میں خیر ہو۔ اور اسی کا اپوزٹ بھی ہے، ہم اپنی زندگی میں اکثر دیکھتے ہیں، اس زندگی میں بہت ساری حقیقتیں وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی تھی کہ بڑے کی بات اور عملے کے اچار کا اثر بعد میں نظر آتا ہے۔ یہ تو ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں، یہ ان کے تجربات کا نچوڑ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی جن بھی اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہوئی ہے نا، کئی لوگوں کو تو ساری عمر اسی بات کا جواب ہی نہیں ملا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا یا صرف میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے۔ میری بہن کو تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا بھائی تو ٹھیک ہے، پھر میں ہی ایسا کیوں پستا ہوں؟ یہ سوال جواب جب اندر اٹھتے ہیں نا تو وہاں سے ایک اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان کھو دیتا ہے۔ رضیت باللہ ربن کا اپوزٹ ہے۔ انسان کا کام کیا ہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی معاملہ ہو انسان اس کو نبٹ لے، اچھے طریقے سے دل کی خوشی بنا لے۔ جیسے آپ کے بچے کو ہر بات نہیں سمجھ آتی آپ کی، لیکن وہ مان لیتا ہے۔ تیسری کلاس کے بچے کو ماسٹرز کا ہر سوال سمجھ نہیں آئے گا، لیکن استاد کیا کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ ابھی اس کو رکھیے، بڑے ہوں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اس پورے قصے میں ہمیں غیب سے پردہ اٹھا کر کچھ چیزیں دکھائی گئی ہیں، اور انیوژل چیزیں، یہ جو حصہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں خاص طور پہ علم اور علم حاصل کرنے کے آداب ہیں۔ انشاءاللہ چند آیتوں کے بعد اگلے پارے کے ساتھ ہی ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ راضی رکھتے، اور اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم کتنے خوش ہو یا کتنے ناخوش ہو، اصل یہ کہ تم نے اس زندگی سے اور ان نعمتوں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں کیا استعمال کرتے ہو۔ پیچھے بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بتایا کہ خضر نام کا ایک شخص ہے اور وہ آپ کو فلاں جگہ ملے گا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشی سمجھا کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس علم تو ہے ہی لیکن میں اور علم بھی لینے کا حریص ہوں، اور چل پڑے۔ اور جاتے جاتے اپنے شاگرد جس کو یوشع بن نون کہا جاتا ہے لے گئے۔ قرآن نے اس کے لیے لفظ فتح استعمال کیا، فتن، اور غلام کے لیے آتا ہے، اور اس پہ بہت سارے اقوال میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جس میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا استاد ہے، اب دنیا کے جس بازار میں لے جا کر بھی مجھے بیچ دے میں تیار ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاگرد کے ساتھ استاد کا تعلق مالک اور غلام والا ہی ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو معنوی زندگی دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت ہی خوبصورت اس میں قول ہیں علماء کے، کہتے ہیں کہ استاد ایک طرح کا شاگرد کا مالک ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو معنوی زندگی دیتا ہے۔ معنوی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں جینا سکھاتی ہے، ایک زندگی وہ جو ماں اور باپ کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ملی اللہ کے حکم سے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جینا کیسے ہے آپ خود سوچئے۔ چھوٹے بچے کو اگر استاد اٹھنا بیٹھنا بات کرنا نہ سکھائے، اے بی سی الف با تا نہ سکھائے، تو وہ اس بچہ بڑے ہو کر دنیا میں کیا کارنامہ انجام دے گا؟ تو لہٰذا یہاں سے ہمیں کچھ اس قسم کی چیزیں بھی نظر آئیں گی۔ آئیے دیکھتے آیت نمبر 62 سے، موسیٰ کا سفر شروع ہو چکا ہے، اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر گئے، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ علم کا سفر تنہا نہیں گزارنا چاہیے بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلیے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس میں خیر اور عافیت ہوگی۔ चल पड़े। मूसा ने जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शन कर दी थी, और वो क्या थी कि देखो ये मछली जो हमने अपने खाने के लिए रखी है, पकी हुई मछली होगी, ये अल्लाह के हुक्म से एक जगह पे जाकर पानी में गिर जाएगी। बस तुम मुझे उस जगह पे वॉर्न कर देना, मुझे थोड़ा सा होशियार कर देना, तो उसके इर्द गिर्द ही कहीं हमें अपने उस्ताद से मुलाकात का मौका मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, 61 का तर्जमा दोहरा लीजिए। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा, यहाँ लफ्ज़ देखिए, बलगा बैनिहिमा नसिया हूताहुमा। अगर पढ़ने में आपने या मैंने जल्दी में क्या पढ़ा, अब देखिए मैं कैसे पढ़ती हूँ, आयतों पे नज़र रखिएगा। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हूताहुमा फतखज़ सबीला फिल बहरी सरबा। कई लोगों को तो कुछ भी नहीं फ़र्क लगा होगा, लेकिन मैंने दो को एक बना दिया। ये जो अलिफ होती है ना, बलगा वो एक पहुंचा और बलगा वो दो पहुंचे, ठीक है। तो ये अरबी ज़ुबान में ड्यूल का सीगा है, तस्निया का सीगा है, तो लिहाजा जब आप इन आयतों की तिलावत करें या तर्जमा सुनाएं तो पूरा पढ़ा करें। मैंने देखा कि बाज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तर्जमा सुनाने में इतने एक्साइटेड होते हैं कि अरबी की आयतें तोड़ देते हैं या उसके लफ्ज़ों को ठीक नहीं पढ़ते। तो जो इनका तर्जमा सुन रहा हो उसका फ़र्ज़ है कि वो उस वक़्त फिर अरबी की गलतियों को भी नोट करें। खैर, दोनों पहुँच गए दो दरियाओं के मिलने की जगह पर। नसीया भुलवा दिया, हूताहुमा मछली उनको, यानी शैतान ने उनको, या वो भूल गए दोनों मछली को। फतखज़ा सबीलहु फिल बहरी सरबा, और बना लिया मछली ने दरिया में एक रास्ता सुरंग बनाकर। सरबा का लफ्ज़ देख लीजिए, थोड़ा सा आपको नया फॉर्म में दिख रहा है। सराब का लफ्ज़ भी आप उर्दू में बोलते हैं मेराज। गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा धूप के अंदर सड़क के ऊपर दूर से देखें तो पानी नज़र आता है ना, वही है, उसी को कहते हैं, धोखा लगता है आंखों को। तो सरब कहते हैं नशेब की तरफ बहना, ऐसे ऊपर से पानी आ रहा हो तो वो नीचे गिर रहा होता है ना, तो लिहाजा जो नशेबी जगह होती है यानी गहराई वाली जगह होती है उसको भी सरब कह देते हैं। यहाँ सुरंग का मानी क्यों कहा कि जब मछली उस जंजबील से निकली होगी और पानी में गिरी तो जहाँ से गुजरती गई होगी पानी में एक हल्की सी सुरंग की कैफियत बन गई होगी। इसी तरह सरब दम कहते हैं आंसुओं का रवा होना। आप देखिए जब एक के ऊपर एक आंसू गिरता है ना, आप ज़रा अपना कोई रोना याद करें, और अपना नहीं तो बच्चे का रोना देख लें जब उसकी टॉफ़ी छीन लेता है कोई बच्चा, तो वैसे वो आंसुओं की जो झड़ी गिरती है ना उसको भी सरब कहते हैं। छोटे छोटे गमों पे इतने बड़े बड़े आंसू बहाने वाले होते हैं। इसी तरह सांप का अपने बिल में उतर जाना, सांप को कभी आप रींगता हुआ देखें तो वो भी इसी तरह आता है, इसके लिए भी यही लफ्ज़ आता है। और वो क्या होता है कि इन सरबतिल हैयतु इला हजरिहा। तो बहरहाल आपको थोड़ी सी एक फीलिंग इसे एक लफ्ज़ से मिल रही होगी कि किस तरीके से ये सारा मामला हुआ। भुनी हुई मछली थी, खाने की गरज से अपने साथ ले गए थे, इस मछली को अल्लाह की तरफ से एक निशानी बनाया गया था, इन्हें हिदायत की गई थी, ये किस्म का पॉइंटर था, डेस्टिनेशन थी। जैसे आप नेविगेटर लगाते हैं तो उसमें कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं और वो वहाँ फिर आपको वॉर्न करती है कि योर डेस्टिनेशन इज़ हेयर, जस्ट कीप लेफ्ट। वो तो ये मछली एक किस्म का नेविगेटर थी। अब जब वहाँ पहुँचे ये सारा कुछ हुआ। इत्तफाक देखिए कि यूशे बिन नून ने तो ये देखा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त आराम कर रहे थे। शागिर्द ने उस्ताद के आराम का ख्याल रखते हुए क्या सोचा कि अच्छा चलो अभी नहीं बताता, ज़रा उठ जाएंगे तो फिर बता दूंगा। उस्ताद ने पूरी बात नहीं बताई थी, यहाँ नोट कीजिए, यहाँ बहुत ही बारीक नुक्ता है इल्म व तालुम का। यूशे बिन नून को मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तो बता दिया कि जहाँ ये मछली हमारे इस थैले में से निकलकर पानी में गिरेगी ना, बस मुझे वहाँ बता देना। आगे अगर ये कहा होता यही है डेस्टिनेशन, यहाँ ही मिलना है हमें हमारे उस्ताद ने, तो यूशे बिन नून कभी ना भूलते। यहाँ से पहले तो एक अमल का नुक्ता लिखिए, और वो क्या है कि ज़रूरी नहीं कि उस्ताद हर बात शागिर्द को पहले से बता दे। कोई पूछता है कल का टाइम टेबल क्या होगा, अच्छा जी कल तफसीर का वक्त है, भाई तशरीफ़ लाइए, आप जब आएंगे तभी कर लेंगे, आप बता दें आप कब आना चाहते हैं। बस जगह मॉडर्न तालीम के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा पेम्पर कर दी गई कि स्टूडेंट्स को एक एक छोटी छोटी बात पहले से बता दी जाती है, हालांकि ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अच्छा जी फिर कह लीजिए ये कोर्स एग्जैक्टली किस डेट को ख़त्म होगा, होगा होना चाहिए ऑफ कोर्स, आपको पता आपका हर कोर्स लिखा होता है, एक एक दिन उसका लिखा होता है, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स को बताएं। कल का टाइम टेबल क्या है पर स्टूडेंट्स को बताना ज़रूरी नहीं है। क्यों? उस्ताद और शागिर्द का फ़र्क ऐसे ही रहना चाहिए जैसे औलाद और माँ बाप का फ़र्क होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आधी बात ज़रूर बता दी कि वक्त पे आएगा, वरना क्या होता? आप ज़रा बच्चों को पहले से बता के तो देखे कोई काम, और फिर अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से प्लान चेंज हो जाए, रात को रोते हुए सोएंगे, अब्बू ने कहा था आइसक्रीम खाने जाएंगे, हस्बैंड वाइफ आपस में कर लेते हैं चलो आज बच्चों को शाम को ले जाएंगे। अच्छा खैर, अब वो बाप बेचारा लेट हो गया किसी वजह से, कोई मीटिंग आ गई बीच में, कोई रास्ते में फंस गया, बेगम को इशारा कर देता, कहते आज नहीं कल ले जाएंगे, बात ख़त्म हो गई। अब अगर आपने बताया होता बच्चों को तो उन्होंने कुछ छोड़ना था आपको, बारिश हो आंधी हो तूफान हो, उन्होंने एक ही जुमला बोलना था हमने खेलने जाना है, हमने खेलने जाना है। बिल्कुल याद रखिए, यहाँ से आपको मुझे एक फ़र्क समझ आता है, देखिए लफ्ज़ फतन है ना डिस्टेंस, लेकिन जैसे मैंने कल थोड़ा सा जिक्र किया था कि शागिर्द के दर्जे होते हैं, एक होता है डे वन का शागिर्द, पहले दिन का नया नया तालिब इल्म, उसको तो हर बात क्या, उसको तो कुछ भी नहीं बताया जाए तो खैर है, लेकिन वक्त के साथ जब स्टूडेंट्स काम करने के लिए साथ सफ़र में चल पड़े, जैसे यहाँ एक उस्ताद शागिर्द का सफ़र साथ है, तो फिर इसमें बहुत सारी बातें खुली जाती है। खैर फलम्मा जावजा, फिर जब वो दोनों ही आगे चले गए, जावजा का लफ्ज़ आप उर्दू में पढ़ते हैं तजावुज़ करना, और कुरदौम में भी है ना कि अल्लाह ताला न तजावस अन्ना, हमसे तजावुज़ कर, यानी हमारी जो ख़ताएँ हमसे हो जाती हैं तो उनसे रू फेर दे। तो मुराद क्या है कि वो आगे निकल गए, काल अली फ़ताहु, कहा अपने फ़तेह को यानी अपने शागिर्द को, आती ना गदा अना, ले आओ हमारा खाना, गदा का मतलब फतूर, नाश्ता, ब्रेकफास्ट। अच्छा मैंने पिछली दफ़ा कुछ गौर किया लफ्ज़ ब्रेकफास्ट पे तो मैं बड़ी हैरान हुई, देखिए इंग्लिश का लफ्ज़ है ना, अब आप देखिए इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं ना, लिखिए ज़रा ब्रेकफास्ट को तोड़े, ब्रेक मैंने तोड़ना तो फास्ट क्या, तो फिर इंग्लिश में भी रोज़ों का तसव्वुर है ना। क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज़्म दो बड़े मज़हब हैं जो इंग्लिश ज़ुबान को होल्ड करते हैं आज भी दुनिया में, उनके मज़हब में भी रोज़े थे लेकिन आज नहीं है, बात वाजे, बस एक इशारा था समझ जाइए। खैर कहने लगे लाओ भाई नाश्ता लाओ, लकत लकी न मिन सफरी ना हाजा न सबा, हम तो आज अपने सफ़र में बहुत ही थक गए। पहली बात देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा, तो क्या इल्म के सफ़र में भूख लगती है, बल्कि ज़्यादा ही लगती है, कुछ को तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, लगनी चाहिए, खाना खा के आना चाहिए, घर से भूखे नहीं आना चाहिए। पहले बंदा सोचता है घर से भूखा जाऊँ, जूँ ही क्लास में बैठे, हाय भूखे, हाय नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता, हाय बीपी लो हो रहा है, हाय शुगर लो हो रही है, हाय गर्मी लग रही, हाय ठंड लग रही, आज चाय नहीं पी के रही, आए दिल घट रहा है, अपनी सारी बेसिक ज़रूरतें पूरी कराइए। और दूसरा बात कि मूसा अलैहिस्सलाम अपना वो लंच बॉक्स साथ लेकर आए, आप भी ले आया करें, लेकिन भूखे ना रहा करें, ब्रेक के वक्त में कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं, चाहे खजूर और पानी पी लें, चाहे आप चाय का कप ले लें, कोई खाएं, क्योंकि जब इंसान थोड़ा थोड़ा खा के अपने आप को इल्म के लिए रखे ना तो फ्रेश रहता है, अदरवाइज़ एक मसनूई किस्म की तलखी तारी हो जाती है। यकीन करें कि मैं सिर्फ आपकी ये सुबह की क्लास के लिए सुबह का या अपने इस खाने का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ से ना कहीं आपको मोटापन लगे, रूखापन लगे, या मुझे भूख लगी और मैं करूँ, और अगर बिलफर्ज़ किसी दिन मैं यहाँ आने तक कुछ ना खाऊं और क्लास ले लूँ तो मैं कहती हूँ अब मैंने रोज़ा रखना है, क्यों कि वो वक्त तो गुजर गया जिसमें मैंने पढ़ना था, अब मैं बोलना तो है नहीं या बोलना है जब तो मगरिब तो हो ही जानी है, तो इंसान रोज़ा रख ले। लेकिन इससे ये पता चलता है कि खाना पीना दीन के ख़िलाफ़ नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ खाने पीने में लगे रहना वही दुरुस्त नहीं। अगली चीज़ इसमें देखिए कि पीछे तो मूसा कह रहे थे लाभ रहू, मैं तो नहीं टलूंगा, चलता ही जाऊंगा, आमदी या हुकूबा, मैं तो मुद्दतों चलता जाऊंगा, यहाँ फ़ौरन ही थक गए, तो थकन कब हुई, जब मंजिल से आगे चले गए, ये भी एक इंसान की आदत है। आप यहाँ से कहते हैं कि मुझे मूस जाना है, एक घंटे कुछ प्लस का मिनट का सफ़र है, आपको पहले से ही पता होगा, आप खुशी खुशी एक घंटा गुजार लेंगे, लेकिन अगर बिलफर्ज आप वहाँ से एग्ज़िट लेने के बजाय सीधा निकल जाए और आप स्वीडन की तरफ निकल गए तो आपको थकन होगी। जो चीज़ पहले से जहन में होती है ना, हमारा जहन उस पर चल पड़ता है, तो उससे ऊपर जाएँ तो थकन होती है, जैसे क्लास के एंड पे आखिरी 10 मिनट में आपको काफ़ी थकन हो रही होती है, आपकी नज़रें होती हैं ज़रा बस्ता ना बंद कर लूँ, ये पेन बंद कर लूँ, अच्छा इनको पता ही नहीं चलेगा मैं अंदर खाते ये सब कुछ करती रहूँगी, एक सेकंड में आपकी आंखों से पता चल जाता है कि अब आप लपेटा लपाटी के मूड में आ गए, ऐसे ही होता है। तो बहरहाल ये थकन, इसमें एक और बड़ा प्यारा नुक्ता उलमा ने कहा, कहते हैं कि अगर किसी के मुँह से ये निकल ही जाए कि मैं थक गया हूँ तो क्या फिर क्या उसका अजर ज़ाया हो जाता है, मतलब मैं आज उठूँ तो मैं कहा हाय आज तो कमर थक गई, और आप कहते हैं हाय आज तो लिख लिख के उंगलियाँ थक गई, तो क्या अजर ज़ाया होगा, नहीं होगा, ये बशरी कमज़ोरी है। उलमा ने कहा जैसे अल्लाह ताला कुरान में पीछे भी आप पढ़ चुके कि ला युआखिज़ुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बग़ैर इरादा बातों पे नहीं पकड़ता। देखिए बास लोगों ने तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह को एक पूरा थानेदार समझा हुआ है, اشارہ کیا مارو، پکڑو، عذاب جہنم، پکڑے گے، ماروں گا، یہ ایسا نہیں، آپ اللہ کے بن جائیں بس، پھر آپ کی بڑی بڑی چھوڑے گا. پکڑ اس نے کن کی کرنی ہے جو اللہ کے نہیں بنتے. تو اللہ تو آپ کے جتنے لاٹ دیکھتا ہے اتنے تو کوئی نہیں. پیچھے اصحاب کہف کا قصہ پڑھ چکے ہیں، کتنے اللہ نے لاٹ دیکھے. تو ان باتوں سے نہیں اللہ کہتا، ہاں اگر آپ کی عادت ہی بن جائے، تھک گئی، ہائے تھکن. یا نوش میں کیا کہتے ہیں تھکن کو؟ شلتن. ہاں ہمارے ساتھ ایک نیبر میں بچی، تو اس کے بچے اس کو بڑا تنگ کرتے تھے نا. تو ایک دن آئے تو میں نے ان کو کہا کہ ماما کو تنگ نہیں کرنا، پھر ماما بیمار ہو جاتی ہے. تو میں نے اسی ماں سے پوچھا، میں نے کہا تھکنے کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا پتہ لگنا میری تھکنے کو؟ اس نے یہ شلتن بولا. تو میں نے اس بچے کو جا کے کہا، میں نے کہا ماما کو شلتن نہیں کرنا. تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو پوچھا، میں نے کیا کہا؟ اس نے یقین کرے کچھ اور ایک لفظ ہے، وہ پی سے شروع ہوتا ہے. میں نے کہا میری بات سمجھ آئی ہے آپ کو بچوں کو؟ کہتا ہے آئیے. میں نے کہا میں نے کیا کہا؟ تو اس نے شلتن نہیں بولا، وہ ایک اور لفظ ہے جس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے. یعنی ماں کہتی ہے کہ میں نے آپ کو جو لفظ بتایا نا، وہ اصل میں پاکستانی طریقے سے ہم بولتے ہیں، لیکن نوشک میں یہی لفظ بولتے ہیں جو اس میرے بچے نے بولا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو سمجھ آ گئی میری بات کی، اور اس نے اس سے بھی اچھے لفظ سے میری اصلاح کی کہ یہ شلتن ادھر نہیں تھا بولنا، یہ کہیں اور بولنا تھا. لیکن اس کا مطلب کہ آپ سارے بھی غلط ہی بولتے ہیں. لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ ہر وقت یہ رونا نہیں رونا چاہیے، میں تھک گئی، میں تھک گئی. میں کہتی ہوں کہ اب تھک گئے تو اب سو جائیں، پلیز آپ یہ نہ فیل کرائیں، کیونکہ ہمارے جسم سے ویسے ہی گلینڈ نکلتے ہیں جیسے جملے ہم بولتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایک یہ جملہ بولے یہاں میں تھک گئی، آپ دیکھیں اگلے دن چار لوگ بولیں گے اور اگلے دن 16 بولیں گے. یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا، ایسا ہوتا ہے. تو ہمیشہ اپنے اندر سے پازیٹیوٹی نکالی ہے، کبھی اپنے لفظوں میں یہ نہ کریں آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، بیمار ہو جاتا ہے. اس پہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا چھوٹی سی آج کی شیئرنگ میں، کہ ایک شخص تھا تو اس کو پھانسی لگانی تھی، یعنی اس کو کراس پہ چڑھانا تھا. تو ڈاکٹرز نے ایک ایکسپیرینس کرنا تھا، انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو تم نے تو مرنا ہی ہے نا، کیسے بھی ماریں تمہیں، تو ہم تمہیں گلے میں پھندا ڈال کر نہیں ماریں گے، بلکہ ہم تمہیں کوبرا سانپ لے کر اس سے ڈسوائیں گے، تمہیں ایک ہلکی سی فیلنگ آئے گی، تمہیں زیادہ درد نہیں ہوگی. خیر وہ کیا کرتا، وہ تو قیدی تھا. جو اپوائنٹڈ ٹائم تھا اس کو بلایا گیا، اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی. اب وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ بس ابھی میری جان جانی ہے. اور جو ہی تھوڑی دیر کے بعد اس کو واقعی ایک ہلکی سی ایسی چبھن چبھنے کا احساس ہوا، کہ جیسے کہ پن چبھتی ہے اور سانپ نے ڈسا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح نکل گئی. جب اس کی روح پرواز کی، اس کی آنکھیں کھولیں، تو ڈاکٹرز نے کہا یہی ہم نے تجربہ کرنا تھا. کہتے ہیں اس کو سانپ سے نہیں ڈسوایا، واقعی کامن پن اس کے اندر چبھوئی ہم نے. ہوا کیا پھر، ڈاکٹرز نے وہ جو ریسرچ کی اس کا خلاصہ کیا تھا، یہ میرے پاس آرٹیکل موجود ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہو تو پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے نا، جو سوچتا ہے نا، تو اس کے ذہن سے ویسے گلینڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو چونکہ پتا تھا مجھے کوبرا سے ڈسوانا ہے، تو جب یہ آ رہا تھا اور وہ پن چبھ رہی تھی، تو اس کے برین نے وہی لیکوڈ پروڈیوس کیا جو سانپ کے زہر میں ہوتا ہے. اصل میں یہ میں نے بتایا تھا پازیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی کے فرق پہ. کچھ لوگ ہمیشہ نگیٹیو باتیں کرتے ہیں، میں بد نصیب، میں بیمار، میرا مقدر ایسا نہیں، میں خوش نہیں. تو کہتے ہیں ان کی باڈی پھر اندر سے پروڈیوس کرتی ہے، اور وہی پھر آ کے ڈپریشن اور ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اور اگر آپ اپوزٹ چیز کے، مجھے کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اور آپ کے اپنے خاندانوں میں ایسے کئی لوگ ہوں گے، منہ چہرے سے پتہ ہی نہیں لگتا وہ بیمار ہے، حال پوچھنے دیں شرمندہ ہو کے آ جائیں، کسی سے مدد کی کوئی ضرورت ہے کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے. کوئی مال دولت کئی لوگوں کے پاس بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن جا کے پوچھے کچھ چاہیے، کچھ سب ٹھیک، اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں مجھے کسی نے غلط بتایا تھا. ہمیشہ پازیٹیو رہیں. زندگی میں سب سے خوبصورت چیز جو اس قرآن پڑھنے کے بعد ایک انسان کو ملتی ہے نا، وہ پازیٹیوٹی ملتی ہے. ڈپریشن میں جا کر اپنے آپ کو ناکارا کر کے، بیکار کر کے، بندہ کسی کام کا نہیں رہتا. پھر ایک آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتی، میں تو بیکار ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، مجھے تو عقل ہی کوئی نہیں، مجھے تو مت ہی کوئی نہیں. آپ یہ جملے ایک سال بولیں، آپ کے اندر یہ ساری نگیٹیو چیزیں آ جائیں گی، پھر ہوگا بھی کچھ نہیں. آپ کے نہیں، اللہ نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، صلاحیتیں ہیں، سب ہے، کچھ کم بھی ہوئی تو بہتر کروں گی. تو آلویز بی پازیٹیو، بی پازیٹیو. اگر اس زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے نا، تو اپنے حالات پہ مت روئیں، اپنی حالت کو بہتر کریں، انشاءاللہ بات ٹھیک ہو جائے گی. پھر اس کے بعد قالا، کہا، ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا، اس وینا، جب ہم نے جگہ پکڑی، الا صخرۃ، ایک چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، तो मैं भूल गया मछली को निगाह में रखना। और साथ ही कहते हैं, वमानसानी हुइल्ल शैतान वानस्कुरा, और नहीं मुझे भुलाए रखा मगर शैतान ने कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। वत्तखज़ सबीलहू फिल बहरी अजबा, तो इसने बना लिया था अपना रास्ता दरिया में अजीब तरीके से, यानी इस जगह वो मछली जिंदा होकर अजीब तरीके से दरिया में चली गई। अब देखिए, शागिर्द से गलती हुई, लेकिन ज़रा बात करने का अंदाज़। इस पे तो इतनी लंबी तफसीर है, लेकिन मैं इतनी लंबी में उलझाऊंगी नहीं आपको। ये जो लफ्ज़ है ना, अराइता, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं सूरह बनी इसराइल में, इब्लीस ने क्या कहा था, अराइत अल्लज़ी, या अराइता, क्या तूने देखा खुद को। यहाँ जो ना अराइता, ये ऐसे जैसे एक तालिबे इल्म ने कहता है, वो असल में झिझक अंदाज है। ये उलमा कहते हैं शागिर्द के अंदाज में उस्ताद से बात करते हुए झिझक होनी चाहिए। धाड़ सानी चटप करके मुंह पे नहीं डाल दिया, क्या नहीं कहते, आपको भी तो पता था ना, आप खुद देख लेते। यानी अगर आज का कोई बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा इंटेलेक्चुअल शागिर्द होता ना, तो कहता आप भी तो मेरे साथ थे ना, आपको नहीं पता था। लेकिन यहाँ झिझक, याद रखिए कि एक उस्ताद के साथ अदब, बोले कल जुमला बोला था मैंने, उस्ताद के साथ अदब और इल्म के साथ सब्र, ये एक खामोश अहद है शागिर्द की तरफ से उस्ताद के साथ। ये जम बना दें, आज जितना इल्म आम हुआ उतना उस्ताद आपके लिए एक बकाऊ माल बन गया। यू आर पेड टू टीच अस, ये जुमले उस्ताद के साथ शागिर्द बोलते हैं कि आपको हमसे पैसे मिलते हैं जी पढ़ाने के, ज़्यादा रोब नहीं आप डाल सकते। एक टीचर थी, उसने किसी बात पे यंग बच्ची को टोका, तो बच्ची ने कहा यू आर नॉट माई मॉम, कहना चाहिए कि मुंह संभाल के बात करो, तुम मेरी माँ नहीं हो जो तुम मुझे इतना डांट रही हो। ये आज का मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम है। तो बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मैंने देखा है जिस तरह माँ बाप की दुआओं से इज्जत मिलती है और सुकून मिलता है ना, इस तरह उस्तादों की दुआओं से जो मिलता है वो उसके बगैर मिल ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ जब तक आप अपने उस्ताद की दुआ ना ले लें, कम अज़ कम मुझे तो सुकून ही नहीं आता, छोटा काम या बड़ा काम। मैंने नहीं इस चीज़ की कभी परवाह की कि वो मसरूफ़ है, बीमार हैं, या वो सेहत में है, या वो कौन है, वो किधर है। मैं जिससे भी दुआ ले सकूँ मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, माँ की दुआ जन्नत की हवा, उस्ताद की दुआ भी जन्नत की नहीं वर्षों की हवा बन जाती है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था इतनी मोटी किताब है मेरे पास, इस वक्त भी मेरे पास एक बुक रखी है, अगर अब मौका मिल गया वक्त के अंदर, जो नहीं मिलेगा मुझे पता, तो आपको मैं इसमें से इतने मोती लिखा सकती हूँ कि आप खुद पढ़ लें, कोई ये ना सोचे कि मैं उस्ताद हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपने लिए आपको कुछ भी नहीं बता रही, क्योंकि मुझे पता है आपके बहुत सारे उस्ताद हैं। जब तक अदब नहीं आएगा, बात करने का सलीका नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। मुंह फट नहीं होना चाहिए शागिर्द को, मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए, माथे पे तेवरियां नहीं होनी चाहिए। और देखिए टूटे हुए जुमले हैं, मैं तो अब तर्जुमा इसका आपको ज़रा सीधा कर दूं, अगर आप अरबी, काला अराइता इज़वीना इला सखरतिन, हर एक के साथ आप एक कॉमा लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे जुमले हैं, फ़ैनी नसीतुल हूत, फिर साथ ही कहते वमान सानी हुइल्ल शैतानु अनाज़कुरा वत्तख़ज़ सबीला फिल बहरी अजबा। अगर मैं इसमें से जुमले निकालूँ ना, तो इस एक आयत में से कम अज़ कम 10 जुमले बनते हैं। जी, झिझक है, शर्मिंदगी का एहसास है, माजरत ख्वाहाना अंदाज ऐसे ही होता है। और ऐसी बात करने वाले पे प्यार आएगा कि गुस्सा? प्यार आएगा, आप तो सीने से लगा लेंगे, चल मेरा बच्चा फिर क्या हुआ, मुझसे भी गलती हो जाती है। और दूसरी बात देखिए कि भूल, ये बात नोट कीजिए, इल्म के सफ़र में भूल साथ साथ रहेगी। बहुत सारे लोगों को तो ये भूल ही गया कि उन्होंने इल्म हासिल करना है, बहुत सारे लोगों को तो ये भूल ही गया कि इस साल रमज़ान में फिर नियत की थी कि कुरान को पढ़ना है, यानी बहुत सारों को तो इल्म हासिल करना ही भुला देता है। ये पहली भूल है शैतान की, अच्छा ये भी करने का काम था, ठीक है। दूसरी बात है, इरादा कराता है, आके फॉर्म फिल करा देते हैं, फिर आना भूल जाते हैं। चलो जी, फिर एक दिन आए तो अगले दिन आना भूल जाते हैं। यकीन करें, जब कोई कोर्स शुरू होता है किसी भी जगह, मैं अपनी नहीं बात करती, मैं सबकी कर सकती हूँ और ऑनलाइन ऑन साइट की करती हूँ, जितने फॉर्म और जितने इंक्लाइनेशंस आते हैं लोगों की तरफ से, अगर वो सारे लोग आखिरी दिन तक उस कोर्स का हिस्सा बन जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि दाखिले रोकने पड़े, जगह ही ना इतनी रहे। लेकिन शैतान भुलवा देता है, हदीस में भी आता है भूल शैतान की तरफ से है। फिर इसी तरह नमाज में भुलवाता है, कितनी रकते पड़ी, किधर पड़ी, क्या किया, और याद क्या करवाता है, चाबियां कहाँ रखी थी। और शाम को क्या पकाना है। अरे रात को तो आज मेहमानों ने आना था, ऐसा कोई अंदर जाके वो दिमाग में एक शोशा छोड़ता है कि बाकी रकतें भी पढ़नी बंदे को भूल जाती हैं, तो भूल साथ होती है। आप पढ़ते हैं, तर्जमा याद किया, बड़ा अच्छी तरह याद हो गया, ज़रा सा और याद करे पिछला भूलेगा। आप कहते हैं पिछला तो भूलता ही जा रहा है, मुझे क्या फ़ायदा होना है जी, ये है वो है। कोई बात नहीं, भूल ठीक है, भोले ना बने। असल बात ये कि इंसान को भूल होगी अल्लाह याद करा देगा, और कुरान में कितनी दफ़ा आता है फज़क्किर, बस याद करा दीजिए। कुरान इज़ अ रिमाइंडर, ये आपका मेरा अलार्म है, ये थिंग्स टू डू है। जब तक ये कुरान हमारे हाथ में होता है, हम दुनिया के इस मेले में नहीं खोते, भूलते हैं, गलतियाँ होती हैं, कमज़ोरी होती है, फ़ौरन दोबारा सीधे हो जाते हैं। खैर, अब यहाँ से अगला अंदाज़ देखिए, कितनी बड़ी गलती हो गई शागिर्द से, लेकिन उस्ताद का अंदाज़ देखिए, काला ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, अरे यही तो था जिसकी हमें तलाश थी। बस इतनी बात, पहली गलती पे शागिर्द को नहीं डांटना चाहिए। इसी तरह साथ साथ पेरेंटिंग की बात भी लिख लें, छोटे बच्चों को बार बार हर बात पे नहीं टोकना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने एहसास तो दिला दिया, अरे भाई ये तो वही जगह थी, नबगी वही लफ्ज़ है जिससे बगी बगा, यबगून तबगून, लेकिन डांटा नहीं। वजह क्या है? कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, मोटिवेशन लूज़ हो जाएगा। जिसको सफ़र के आगाज़ में टोकना शुरू कर दे, वो कहेगा इधर से गाड़ी मोड़ लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो शुरू में हमेशा ओवर लुक करें, और अल्लाह के नबी सल्लम ने तरबियत औलाद के जो असूल बताए हैं उसमें भी यही बात है कि छोटे बच्चों को बहुत रोक टोक नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि जो आज ले लिया गया पेरेंटिंग में, कि सर पे चढ़ा लिया जाए और उनसे डरा जाए और उनसे पूछ पूछ के काम किया जाए और उनसे पूछा जाए अम्मी अब्बा मारते तो नहीं है, और मामा प्यार करती हैं कि नहीं, बाबा खाना देती हैं कि नहीं, ये तो नहीं, ये भी एक हद से बड़ा हुआ प्यार है। बहरहाल खैर, क्या वो कोई बात नहीं, फरतद आला सारी ही माँ कससा, फिर वो दोनों वापस लौटे अपने नकुशे पा को देखते हुए। फरतद्दा लिखिए, रिवाइज करना, रेपिटिशन। अरबी की एक कहावत है जिसका खुलासा क्या है कि मुज़ाकरा इल्म की जान है। पहली दफ़ा एक दफ़ा में बात नहीं समझ आती, दोबारा सुन लें, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद उसके बाद। बिल्कुल इसी तरह से अगर थोड़ा सा आगे चले गए तो बहस में और वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि क्या किया कि आप और ज़्यादा दोबारा वक्त आ जाइए, तो चीज़ को बार बार याद करना चाहिए। आप देखिए कि हम मुहद्दिसीन को पढ़ते हैं, उनको हज़ारों हदीसें याद थी, 1 लाख हदीसें इमाम बुखारी ने लिखी, कैसे लिखी? फरतद्दा, रेपिटिशन, रेपिटिशन करें। बेस्ट थिंग किसी नॉलेज को, किसी इल्म को अपने दिल के बर्तन में कंटेन करने का तरीका, मुज़ाकरा। आपको यहाँ शुरू दिन से ये बात कही जाती है, तर्जमा 10 दफ़ा याद करें, तजवीद का लेसन शुरू में आप घर में 7 दफ़ा कम अज़ कम पढ़ें, ये किस्म की आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली जाती है। क्यों? आप देखेंगे कुंद से कुंद जहन भी है ना, तो वो भी इस चीज़ को याद कर लेगा। और दूसरी बात, इसमें इस टैक्स के अतबार से देखें कि अपनी गलती को मेकअप कर लीजिए, थोड़ा आगे चले गए थे ना, वापस आ जाइए, इट्स ओके। अब वहाँ खड़े होकर नहीं कह दें क्या करूँ किधर जाऊँ। और तीसरी बात देखिए, आला आसारी ही माँ कससा, अपने आसार देखते हुए, आसार वही ना असर निशान, नक़ुशे पा नक्शे कदम, और कससा देखते हुए, यानी अब वापस गलत तरफ ना चल पड़िए। और ज़िंदगी में आपने देखा है, आप 200 मील का भी सफ़र तय कर लें, इतनी चुभन नहीं होती, लेकिन वो जो 10 किलोमीटर आगे चले गए थे ना, उधर से वापस आना बड़ा मुश्किल है, और कई लोग बुड़बुड़ाते ही रहते हैं उतने में। नहीं, हो गया तो हो गया, चलिए खैर ये भी हो गया।